ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी भुवनेश्वर में आज पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। ओडिशा पहली बार इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों के साथ साथ सीआरपीएफ, रॉ, एनएसजी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और एसपीजी के प्रमुख शामिल होंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के संभल में एक मुगल कालीन मस्जिद का सर्वेक्षण कराने के जिला न्यायालय के 19 नवंबर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा। शीर्ष न्यायालय की वेबसाइट पर 29 नवंबर को जारी की गई सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ संभल में शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में दीवानी न्यायाधीश के 19 नवंबर को पारित आदेश के क्रियान्वयन पर एक पक्षीय रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के अदालती आदेश के साथ ही 19 नवंबर से तनाव बढ़ रहा है। अपील में दावा किया गया है कि मस्जिद के स्थान पर पहले हरिहर मंदिर था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और अन्य विपक्षी दलों ने एक प्रमुख व्यापारिक समूह पर कथित रिश्वतखोरी के आरोपों सहित कई मुद्दों पर हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ने हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि संसद सार्थक चर्चा के लिए एक मंच है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में विपक्ष के व्यवहार की निंदा की। इस बीच सदन ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की समिति की रिपोर्ट पेश करने का समय बढ़ाकर अगले वर्ष बजट सत्र के अंतिम दिन करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने यह जानकारी दी। मुंबई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की विशेष अदालत ने पुणे में बांग्लादेश से आए अंसारुल्ला बांग्ला टीम एबीटी के आतंकवादियों को शरण देने के जुर्म में 3 बांग्लादेशियों को 5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। एनआईए की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आईपीसी और विदेशी अधिनियम की संबंधित धाराओं के अंतर्गत इन बांग्लादेशियों को दोषी ठहराया गया और प्रत्येक को ₹2,000 के जुर्माने के साथ 5 वर्ष कारावास सजा सुनाई गई। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में प्रदूषण रोधी उपाय ग्रैप का 4th चरण 2 दिसंबर तक जारी रखने का आदेश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह उपाय स्कूलों पर लागू नहीं होंगे। न्यायालय ने कहा कि कोर्ट कमिश्नरों द्वारा प्रस्तुत दूसरी रिपोर्ट में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान से संबंधित प्रतिबंधों को लागू करने में प्रशासन की घोर विफलता दिखाई देती है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजीत पवार ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य में सरकार गठन को लेकर चर्चा की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने कल 4थी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में श्री सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। लद्दाख में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए वित्त मंत्रालय ने लद्दाख के लिए पहले से स्वीकृत नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 103 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने लेह में मौजूदा 200 बिस्तरों वाले एसएनएम अस्पताल के विस्तार के लिए 142 अतिरिक्त पदों के सृजन को भी मंजूरी दी। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में बने गहरे दबाव के क्षेत्र के कारण आज उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। तमिलनाडु के तटीय जिलों में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आयोजन स्थल से संबंधित एक वर्चुअल बैठक करेगी। इस बैठक में पाकिस्तान में प्रतियोगिता आयोजित कराने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।